शुरू करें। चलिए, आयात पे जाने से पहले सबक का खुलासा। आज हम सूरत नूर का बहुत ही अहम सबक करने वाले हैं। सिर्फ इस एक सबक को सुनने के बाद इंसान को दो मुख्तलिफ किस्म के ख्याल आते हैं। एक तो यह है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। ये ख्याल किसको आता है? जो फितरत के मुताबिक जी रहा होता है, जिसने अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में इस तरह से रखा होता है कि उसमें और अल्लाह के दीन के निफाज में कोई फर्क नहीं होता। एक दूसरा रवैया इन आयात को सुनने के बाद आएगा और वो क्या, उफ, ये भी इतना मुश्किल। तो दोनों में से जो कैफियत आपकी हो, आप अगर पहली कैफियत पे तो आपका हाल ऐसे है कि जिसने घर पहले साफ किया हो, अगर उसको कोई कहे कि कल आपके घर की इंस्पेक्शन है या कोई मेहमान आ रहे हैं, तो वो कहेगा नो प्रॉब्लम, हल्की सी झाड़ फूंक और करेंगे, जरा रिफ्रेशमेंट करें, फ्रेश करेंगे, घर साफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी सूरत उसकी है कि जिसने घर इतना मैसी कर दिया कि एक दिन में तो साफ होना मुमकिन नहीं, तो वो ऐसी आयात को सुनकर फिर परेशान होगा। लेकिन मैं आप दोनों ही को तसल्ली दे दूं कि चाहे आप पहले ग्रुप में या आप दूसरे ग्रुप में हैं, आपको परेशान नहीं होना। इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया और मुझे मौका दिया कि हमारी जिंदगी में ही ये क्लीन अप होने लग गया। और इंशाल्लाह ताला जब हम इसको सुनने की और अमल करने की नीयत से सुनेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। तो परेशान ना हो, घबराए नहीं। सबसे पहली चीज आप यहाँ आज के सबक के नाते से ये नोट कीजिए कि हमारे पिछले दो जो लेसन थे ये जिना और जिना की तोहमत के बारे में थे। आज के सबक से लेकर आगे तक सद्दे जराए जिना का जिक्र है। आसान लफ्जों में क्या है, जिना को रोकने वाली क्या अमली कोशिशें हैं। इस्लाम दीन फितरत है, सूरत के शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, और इस्लाम का मिजाज हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस्लाम का मिजाज जिना को पसंद करने वाला है ही नहीं। तो मैयर्स लिए गए कुछ इस किस्म के काम करो कि जिसके बाद तुम्हें अल्लाह की बात को मानना आसान हो। तो आप कह सकते हैं कि सूरत के शुरू में जो फवाहिश और बेहयाई की बात थी, अब यहां से उसके अमली इकदाम हैं, और इसमें पहला मसला इस्तीजान का है। इस्तीजान कहते हैं कि इजाजत लेकर कहीं जाना, बगैर इजाजत के सर धाड़ मुंह फाड़ जाके रात को दिन को किसी के सर पे सवार होना, ये इस्लामी कल्चर नहीं है। चाहे आप सरप्राइज देने के शौक में हो, चाहे आप बेतकल्लुफ होने के शौक में हो। फिर दूसरी चीज इन आयतों में जो आज हम देखने वाले हैं वो है औरत और मर्द के लिए पर्दे के अहकाम। जितनी डिटेल से अल्लाह ताला ने यहाँ ये मौजू खोल के बयान कर दिया, लगता है कि अब तो गुंजाइश ही नहीं है किसी के इसके बारे में कुछ कहने की। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे यहाँ पर्दे का मौजू बिल्कुल वैसा ही मौजू बन गया जैसे बनी इसराइल का गाय का मौजू था। कैसी हो, कब करें, किस रंग की हो, जब आयतें आप पढ़ेंगे तो आपको टैली करवाऊंगी, ना करवा सकी याद करा दीजिएगा कि आज हमने पर्दे के मौजू को गाय का मसला बना लिया। समझ ही नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों को, तो इंशाल्लाह आज इस पे सर हासिल बहस करेंगे। जिसके दिल दिल में जो बात है वो दिल खोल के पूछ सकता है, और उसके बाद फिर हम अपने दिलों से पूछेंगे कि तूबू इलल्लाह जमीयन अय्युहल मोमिनून, क्या इस हुक्म पे तवज्जो है कि तौबा कर लो तुम सारे के सारे। यानी इज्तमाई तौबा का जिक्र है कि इस मसल में एक सिस्टम की बात है। यानी आज हम देखेंगे कि पर्दा कपड़े के एक टुकड़े का नाम नहीं है, पर्दा एक सिस्टम है, पर्दा एक तर्ज़े जिंदगी है, और पर्दा लाने के लिए इज्तमाई माहौल बनाने लाजमी है। फिर आज के सबक में हमें महरम रिश्तों की लिस्ट भी मिलेगी। सूरत निसा में चौथे पारे के आखिर में हमने औरतों के नाते से पढ़ लिया था कि कौन कौन सी औरतें मुहर्रिमात हैं, यानी जिनसे निकाह नहीं हो सकता। यहाँ आज हम मर्द रिश्तों की लिस्ट पढ़ेंगे, और आप भी इस लिस्ट को सुनते पढ़ते वक्त चेक कर सकेंगे कि बस इनके अलावा जिनके सामने मेरी जीनत खुलती है वो कहाँ तक है। तो आइए शुरू करते हैं, जीनत की बातें भी हैं आज के सबक में कि जीनत जायज है, क्या करें, किस हद तक करें। थोड़ा सा आपको अंदाज भी बता दूं आज का सबक पढ़ाने का, चूंकि बहुत सारे इसमें काम आते हैं। कुरान की आयतें इतनी वाज़े, इतनी खूबसूरत हैं, मैं कोशिश करूंगी कि एंड तक पूरा सबक एक दफा आपके साथ आयतों की रोशनी में गो थ्रू कर दूं। उसके बाद फिर हम इसको डिस्कशन के स्टाइल में मुख्तलिफ फी जमाना जो आज के दौर के हमारे इश्यूज हैं उनको देखेंगे। तो गोया कि इस सबक, इस मौजू का समझने के लिए हमें ये पूरा सबक ए टू जेड सुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोई जहन में सवाल है, कोई बात है, या आपको कोई बात ना मिले तो फिर आप कहीं और से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आयत नंबर 27 से, आयत नंबर 27। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। इस पुकार को भी दिल पर महसूस कीजिएगा। ईमान कबूल करने वालों से खिताब है, और जो ईमान कबूल कर लेता है उसको अल्लाह का हुक्म कबूल करना मुश्किल नहीं लगता। और आमनू बज़ाहर तो मुजक्कर का सीगा है, लेकिन इसमें फीमेल भी है, और ये कुरान पाक में बहुत जगह हुआ। क्या करो या क्या ना करो, यहाँ डोंट्स की बात है। ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में दाखिल ना हुआ करो। यानी जिस तरह अपने घरों में चले जाते हो उस तरह दूसरे घरों में ऐसे ही लौट के चले जाया करो। और लफ्ज बुयूतन बैत की जमा है, बैत, बैत का लफ्ज है बाता यबीतु से है। बाता कहते हैं रात गुजारना। पीछे आप और डिटेल से सूरह निसा में तकरार के साथ पढ़ चुके हैं वो जो वाक्या था जिसमें खानदान का शख्स होने की वजह से बशर बिन तामा के ऊपर लोगों ने कुछ उसकी साइड ली थी, तो वहां लफ्ज युबीतून बहुत दफा आपने पढ़ा था। इस युबीतूना, जब तुम रातों को बातें करते थे, वही है, ठीक है। और यहाँ लफ्ज बुयूतन जो है ना, ये नकीरा में आया है, यानी कॉमन नाउन में आया है, तो यहाँ इससे फिर मुराद आम घर है। घरों की अमूमन चार किस्में होती हैं, वो समझ लें साथ साथ ही तो इंशाल्लाह बात वाजे होगी। एक तो होता है इंसान का अपना घर, ठीक है, जहां इंसान खुद रहता है वो उसका अपना घर है। अब घर से मुराद ये नहीं कि आप ओन करते हैं या किराए पे रहते हैं, मुराद ये कि जिस घर में आपका सामान है जिसको आप अपना कहते हैं, ठीक है। अब इसमें किसी दूसरे के आने का कोई धड़का नहीं होता। दूसरी किस्म के वो घर होते हैं जिसमें कोई और भी रहता है और आप भी रहते हैं। अपने मुल्क में हो तो आप इसको कहते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, और अगर नॉर्वे सॉरी अगर आप यूके में रह रहे हैं, लंदन में खास तौर पे, तो आप कहेंगे शेयरिंग रूम। एक ही घर को बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। अब इस घर में खतरा क्या होता है कि कुछ नॉन महरम भी होंगे, गैर औरतें हैं तो गैर मर्द भी होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को लेंगे तो वहां अपने महरम भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं, यानी ये दूसरी किस्म के घर हैं जिसमें मिली जुली चीजें होती हैं। तीसरी किस्म के वो मकान होते हैं कि जिसमें किसी के रहने या ना रहने की बात ही नहीं है। मसलन जरूरत की चीजें, हॉस्पिटल, वहां कोई रहता तो नहीं है, होटल, खाना खाने चले गए, यानी जहां इंसान अपनी किसी वक्ती जरूरत के लिए रहता है और जहां यानी बस इंसान रह नहीं सकते, ठीक है। और इसमें आपके स्कूल, मदरसे, मस्जिदें और लोगों की आमदोरफ्त की जगह आ जाती हैं। चौथी किस्म के वो मकान होते हैं कि जिसमें कोई रह भी सकता है कभी और कभी नहीं भी रह सकता, यानी होपफुली किसी वक्त वो खाली होते हैं। ये जो मैंने पहले होटल वगैरह कहा था वो काट के इसमें कर लीजिए, यानी ये वो होते हैं कि जहां जरूरत के लिए लोग थोड़े दिन के लिए रहते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ गैर बुयूतिकुम में ये सारी ही चीजें डाल दी, ठीक है, कि तुम जब अपने घरों के सिवा किसी दूसरे के घर में दाखिल हो तो ऐसे ही मुंह उठाकर ना चले जाओ, बल्कि क्या करो, हत्ता यहाँ तक के तस्तानिसु, यहाँ तक कि तुम उन्स हासिल कर लो। और इसका एक बड़ा खूबसूरत तर्जुमा हो सकता है, यहाँ तक कि उनकी रजा मालूम कर लो। अब उन्स मालूम करना, रजा मालूम करना क्या है कि वो तुम्हें खुशी से इजाजत दे आने की। बाज दफा मुरव्वत के मारे कोई कह देता है अच्छा आ जाए, सर पे खड़े हो गए दरवाजे पे, तब अगला दरवाजा तो नहीं बंद करेगा ना, या आप पहुंच ही गए हैं वहां। तो मुराद क्या है कि जब भी किसी के घर जाओ तो उससे इस तरह की इजाजत लो कि आने वाला जो जा रहा है उसको वहां अच्छा प्रोटोकॉल मिले, और जो बुला रहा है या जिसके घर में जा रहा है वो उस वक्त अपनी किसी ऐसी मजबूरी में ना हो कि इसको अच्छी तरह से वो डील ना कर सके, और अच्छी तरह डील नहीं करेगा तो नुकसान किसको होगा। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इस बात की इजाजत दी कि तुम दूसरों के घरों में जाओ, ठीक है। लेकिन एक پابندی لگا دی, اور وہ کیا ہے کہ ایسے ہی ہر وقت نہ چلے جاؤ بلکہ تستانسو, اور ساتھ ہی کہہ دیے وتسلیمو علی اہلھا, اس کے گھر والوں پر سلام بھی پیش کرو. اب یہ طریقہ ہے, اس کو میں حدیثوں کی روشنی میں آپ کو سنا دوں گی کہ انس حاصل کرنا اور سلام کرنا اس سے کیا مراد ہے, لیکن یہاں ایک اصول مل گیا کہ جب اجازت مل جائے کہ آئیے تو کلام کیا ہونا چاہیے, پہلا گھر میں جاتے ہی السلام علیکم, سلام کیا جائے گا. اس کام سے فائدہ کیا ہوگا, ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے. کیسے بہتر ہے ابھی اس کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ حکم کیوں دیے جا رہے ہیں, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ٹھیک ہے, چلیے اب یہ تو تھا کہ جائیں کیسے, اب نہ جانے کی کیا شرطیں, اگلی آئے ساتھ لیں گے تو موضوع پورا ہوگا. آئی 28, فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ, ہے کوئی نہیں, تم نے سلام بھی کیا, نوک بھی کیا, اجازت بھی مانگی, آگے سے کوئی جواب بھی نہیں آ رہا, تو فلا تدخلوها, پھر خود سے ہی نہ سوچ لو کہ چلو پھر میں چلے ہی جاتا ہوں اندر. اور یاد رکھیے کہ جس ماحول میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس دور میں دروازے تو دروازے, بعض گھروں کے باہر پردہ بھی نہیں ہوتا تھا, اس طرح سے وہ ایک چوکھٹ سی بنا کے گزر جاتے تھے اور پردے کے بغیر ہی رہنا پڑتا تھا, کچھ کے گھروں میں پردے ہوتے تھے, تو اب احتمال ہے نا کہ کسی بھی وقت کوئی دروازہ پردہ کھول کے آ جائے, اور پردہ نہیں ہے تو سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا, کیونکہ اگر اس چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو گئے تو اندر نظر پڑنے کا ڈر ہوتا تھا, تو اس لیے کہا کہ خود نہ داخل ہو جاؤ, کیونکہ آج ہم تو کئی کی لاکس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, سیفٹی لاک ہے, فلاں فلاں ہے, تو ہر طرح کے ماحول کو سامنے رکھیے. یہی قرآن دیہاتوں میں بھی پڑھا جاتا ہے, یہی جھونپڑیوں میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے, یہی کچی بستیوں والوں کے لیے, اور یہی ماشاءاللہ ہمارے پوش گھروں کے لیے بھی ہے, لیکن حکم سب کے لیے ایک ہی ہے کہ داخل نہ ہو جب تک کہ اندر سے کوئی آواز نہ آئے, حتی یوزن لکم, جب کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے, یعنی خالی گھر میں بھی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں. یہ بھی اتنا بڑا حکم ہے. بعض دفعہ انسان کسی کے گھر کی چابیاں رکھتا ہے, بعض دفعہ انسان کے پاس کوئی ٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے, تو مالک کی اجازت کے بغیر تم نہیں جا سکتے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے خوبصورت بھی کوئی دین ہو سکتا ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا, اب اس سے بھی سخت حکم. چلے پہلی تو بات ہے گھر میں تھا ہی کوئی نہیں, آپ نے بھی سوچ لیا کہ اچھا ہم بغیر اطلاع دے کے آگے, کوئی بات نہیں وہ ہے ہی نہیں ہے, چلو دل برا نہیں ہوگا, اپنے بھی غصہ آئے گا نا کہ پہلے پتا کیوں نہیں کیا, چلو صبر ہو جائے گا. لیکن یہ وہ حکم ہے جس پہ صبر آتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کے اس حکم پہ یقین نہ آ جائے. اب آپ کسی کے گھر گئے, بڑے دھن دھناتے سرپرائز دیتے ہوئے, مزے کرتے ہوئے, چلو آج چلتے ہیں, بچوں کھانا بھی ادھر ہی کھائیں گے, اور آنٹی کو دیکھنا سرپرائز دے دیں گے, اور کیا ہوا ابھی تو رات کے 11 ہی بجے ہیں, ویکینڈ تو ہے, صبح فجر تک وہاں بیٹھیں گے. آپ دھن دھناتے ہوئے گئے, نوک کیا, بیل کی, کچھ نہیں کچھ نہیں, چلے اب آپ پریشان ہو کے آ گئے, اور دوسری صورت ہے کہ آپ نے ایک بیل کی پھر دوسری کی, اور بیل بھی ایسی کی کہ انگلی نہ اٹھائی تو اندر سے آواز آتی ہے فرج ہو, لوٹ جاؤ, جاؤ ابھی نہیں آ سکتے, یہ ٹائم نہیں ہے تمہیں ملنے کا, تو فرج ہو, لوٹ جاؤ. یہ کیسا دین ہے, کیا یہ رشتے نہیں توڑوا رہا, یہ دین تو کسی کو خوشی نہیں دیکھ سکتا. ہم تو اتنے اچھے موڈ میں آئے تھے کہ ویکینڈ کی نائٹ مناتے ہیں, صبح آئیں گے آنٹی کے گھر سے, اور بچوں نے بھی اپنے چھپا کے سلیپنگ بیگز رکھے ہوئے تھے اندر, اور کہیں نہ کہیں نائٹ سوٹ چھپائے ہوئے تھے کہ وہ ایک دفعہ کہیں گے اب ادھر ہی سو جائے نا, تو ہم سو جائیں گے کیونکہ ہم مسلم ہیں, ہم اتنا پیار کرتے ہیں. ادھر تو کہانی الگ ہو گئی, فرج ہو جاؤ, گو ہیڈ, ہو اس کا الگ ہو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یہ ہے وہ حکم جس کو اگر ہم یہاں تک دیکھیں, لیکن اگلی آیت میں تھوڑا سا اس کا معاملہ پورا ہونا ہے تو اس کو بھی ساتھ ہی لیں گے. 29, لیس علیکم جناح, یعنی ہر دفعہ ایسا ہی حال نہیں ہوتا جو کتنی سنجیدہ کوشش ہو, بلکہ کبھی کبھی حالات فرق ہوتے ہیں. وہ کیا ہے, لیس علیکم جناح, تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان تدخلوا بیوتن, کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ, غیر مسکونت فیہا, جہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے, غیر رہائشی گھر جہاں کسی کے رہنے کی امید ہی نہیں ہے, اور فیہا متاع لکم, جن میں تمہارے کچھ سامان ہو, مراد سٹورز, کوئی گودام ہے, کوئی دکان ہے, کوئی سٹوریج رکھا ہوا تم نے کہیں اپنا سامان, जिसके अंदर तुम्हारा जरूरत का कोई मामला है, और अगर उन्होंने ओपन का साइन खोला हो तो इसका मतलब ये है कि आप जा सकते हैं, या आपने किसी भी दुकान के अंदर कुछ चीजें रखी हुई हैं, चाबी आपके पास है, रात को आपको चीज की जरूरत पड़गी फिर चले जाओ, नो प्रॉब्लम। वो अल्लाह यालमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो, ये तो मायूब बात है, ये तो कोई मुहस्सपन नहीं है। तो आइए जरा आप इस आयत की रोशनी में हम देखते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला के इस हुक्म में हिकमत क्या है। पहली बात आप देखिए कि जब इस घर की बात होती है, हम पीछे सूरत नहल में क्या पढ़ चुके हैं घरों की खूबी, अल्लाह ताला फरमाते हैं घर कौन से हैं जिसमें तुम सुकून पाते हो, है याद आपको आयत, कि वो घर जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए जाय सुकून बनाया। घर एक ऐसी जगह होती है कि जहां इंसान अपने आप को बिल्कुल दूसरों से बेनियाज करके रखना पसंद करता है। हम सारा दिन बाहर रहें, हमारी खातिरें हो, हमारी खिदमत हो, हम खाएं पिएं शॉपिंग करें, लेकिन हर बंदा ये जानता है कि जो ही हम घर जाते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं और हम रिलैक्स होना चाहते हैं। बाहर के कपड़े हल्के कर लेते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, नरम कपड़े ढीले ढाले कपड़े पहन लेते हैं। अब जब ऐसे घर हो, घर में जब बंदा इस किस्म के हाल में होता है तो इंसान पसंद ही नहीं करता कि कोई उसको इस हाल में देखे। तो अल्लाह ताला ने इस बारे में हमें बता दिया, सूरत नहल में आता है जाल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए घर सुकून और राहत का जरिया बना दिए। अल्लाह के नबी ने अपने कौल और अमल से इसकी ताकीद भी की, लेकिन अफसोस की बात है कि आज के हम मुसलमान इन पर अमल करने से गाफिल हो गए। पढ़े लिखे इवन नेक लोग भी इसको कोई गुनाह नहीं समझते ना इस पर अमल करते हैं कि हम दूसरों के आराम का ख्याल रखें। आज आप देखिए कि दुनिया की कई मुहजब कौमें हैं ना, उन्होंने इसको इख्तियार किया हुआ है, वो पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं 1 महीना कि अच्छा आपने आना है तो किस दिन आएंगे, किस वक्त आएंगे, अच्छा जरा जाने का भी वक्त बता दें। और हम कहते हैं देखो ये क्या अमेरिकन है, कभी आज भी कोई हमसे कोई कहे ना कि अच्छा जी फोन करके अस्सलाम वालेकुम मैं आपके घर आ जाऊं, मैं खुद अपने अमल से आपको बता सकती हूँ कि कई दफा पाकिस्तान जाने के बाद जो रिश्तेदारों के घर जाना है तो उनको फोन करके पूछे आ जाए तो वो मजाक उड़ते हैं, अच्छा जी ये क्या अमेरिकन तरीका है, जब मर्जी आए आ जाए बैठे, नहीं आप बता दें ठीक है, ये क्या गैरों वाली बातें आप कर रही हैं, जिन्हें हमारे यहाँ मोहब्बत क्या है कि अगला के सर पे सवार रहो। अच्छा एक और हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है, किसी को पहले फोन करें, जैसे मिसाल है मैं लाहौर जाती हूँ तो फिर आगे दूसरे शहरों में जाना है और थोड़ी थोड़ी देर मिलना होता है, तो मैं इन्हें कहूँ ना कि अच्छा फोन कर दें जरा घर से निकलते हुए क्या आ रहे हैं हम लोग, खत्म नहीं रहने दो, फिर वो इख्तमाम शुरू कर देंगे। भाई इख्तमाम करेंगे तो जब हम सर पे उनके पहुंच जाएंगे वो तो उन्होंने फिर भी करना है, और वो घर वाले को अगर ना करे तो कहते हैं जरा फोन तो कर देते हैं आपके तो मियां भी साथ है, हर बंदे की इज्जत होती है। लेकिन हमारे कल्चर में इन बातों को बुरा समझा जाता है जो इस्लाम है, लोग सोचते हैं कि बाहर रहते हुए ये भी बड़े गोरे बन गए, ये बहुत मॉडर्न हो गए, हालांकि ये सरासर इस्लाम है। अल्लाह सुबहान तआला ने ये हुक्म के दूसरों के घरों में क्यों इजाजत लेकर जाओ, तो इसकी चंद हिकमतें नोट कर लीजिए ताकि हम दूसरों को भी जवाब दे सकें कि इस्लाम के सारे हुक्म क्या है। पहली बात है दूसरों की आजादी में खलल नहीं डालना चाहिए, हर इंसान का हक है कि वो घर में सुकून से रहे। दूसरी मसलत इसमें क्या है कि जो शख्स किसी के पास गया, आप जाते हैं तो आप सोचते हैं ना कि आपकी अच्छी इज्जत हो, खातिर हो, अगला आपको टाइम भी दे, अब आप किसी ऐसे वक्त में चले गए जिस वक्त अगला वाकई मजबूर है। घर में आप देखिए कि किसी हर वक्त इंसान एक तो इस सिचुएशन में नहीं होता किसी को मिले, कोई औरत उसने सर पे मेहंदी लगाई हुई है, कोई अपने आप को सजा रहा है, बस दफा घर की अलमारियां उल्टी रहती हैं, अब ये साफ कर लें अब वो कर लें, बस दफा आप बच्चों को टाइम दे रहे हैं, अब बीच में कोई आ गया, अब उस वक्त क्या होता है करें तो क्या करें, चीजें इधर छुपाओ पर और मुंह धो, और फिर बुरे दिल से आप उनके साथ बैठ के कहते हैं बड़ी खुशी हुई आपके आने की, खाक खुशी हुई दिल में तो आ रहा है कि ग्रीन स्क्रीन जाया हो गई जब भी तो लगाई थी और अब इनके लिए मुंह धोना पड़ा, और अगर कोई नौकर खोल दे और आप अंदर ना जाए तो फिर 15 मिनट बाद जाए तो कहेंगे अच्छा जी आपको तुम्हारे आने की खुशी नहीं हुई है, तो आने वाले को खातिर ख्वाह प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, ये एक दूसरा नुकसान होगा, उसके दिल में ख्याल आएगा कि भाई मेरी इज्जत नहीं की गई। तीसरी बात आप देखिए कि जो इस सूरत का थीम है फवाहिश और बेहयाई के इंसदाद, और वो क्या कि घर में चले जाए, आप इमेजिन करें ना कोई मर्द है किसी के घर में गया, इजाजत ली ना ली चला गया। अभी वो अंदर जाके बैठा है घर में, बेगम उनकी अकेली थी, ऊपर से उनके हस्बैंड भी आ गए, कई खतरे पैदा हो सकते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई ने तो सरेआम खुलेआम किसी औरत, हजरत आयशा को हजरत सहाबी के साथ आता देखकर तूफान खड़ा कर दिया, तो वो शौहर किस गलतफहमी का शिकार नहीं हो सकता? ये क्यों आया, ये किधर आया, कैसे आया, चाहे वो शौहर का दोस्त ही हो तो, और खतरा भी हो सकता है। अकेली औरत घर में, शैतान कुछ भी दिल में डाल सकता है, क्योंकि हदीस में आता है कि जहां औरत और मर्द अकेले होते हैं तीसरा उनमें शैतान होता है, तो लिहाजा अल्लाह ने इसको रोक दिया। फिर अगली बात एक और भी ये है कि बस दफा इंसान जो घर में है आपस में, हो सकता है लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो मियाँ बीवी का, कोई पैसों का हिसाब किताब हो रहा हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जब घर में इंसान रहे तो हर वक्त जो धड़का लगा रहे कि कोई भी आ सकता है कोई भी आ सकता है, तो इससे घर का घर होना खराब हो जाएगा। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि घर में इंसान की आजादी है, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने इस्तेजान की का हुक्म दे दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास जब सहाबियात आती थी तो इजाजत लेती थी। अब इजाजत कौन किससे ले, औरतें भी औरतों से इजाजत लेंगी, मर्द भी मर्दों से इजाजत लेंगे। फिर समझना इसको अगर हम साथ साथ देखते जाएं, तो आप देखिए कि पहली बात है कि अगर आप अपने किसी जाति काम के या दीन के काम या दावत के काम पे या किसी भी काम पे किसी अपनी दोस्त के घर जाते हैं, सबसे पहले कोशिश करें उस वक्त जाएं जब उनके घर में उनके मर्द ना हो, मर्द बाप है भाई है बेटा है बिल्कुल ना हो। क्योंकि एक तो प्राइवेसी और पर्दे की बात है, लेकिन दूसरा ये कि मर्दों को खामखा दुखी नहीं, हर वक्त मर्दों को परेशान नहीं रखना चाहिए। अब तुम्हारी दोस्त आ गई, अच्छा ये सहेली आ गई है, अभी वो दूसरी गली वाली आ गई है, ये क्या खेल है भाई, ये घर है कि होटल है? और मर्द देख रहे होते हैं अभी चाय बनी थी या फिर बन रही है, या जूस जा रहा है पानी जा रहा है, हो सकता है कोई कंजूस दिल का वो कहेगा मेरी बीवी तो मेरे पैसे इस तरह लुटाती है। कोशिश करें उस वक्त जाए जब घर में मर्द हो, चॉइस तो है ना, बड़ी बात नहीं, कोई मजबूरी कोई पहले से प्लान था वो और बात है, अदरवाइज इस तरह नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि आप जब औरतों में भी जाएं, यानी आप अपनी किसी दोस्त के घर जाते हैं, पूरे शरह सदर के साथ उनसे पूछें क्या ये दिन ठीक है, कोई बात नहीं मैं आज नहीं कल आ जाऊंगी, सुबह नहीं आऊंगी शाम को आ जाऊंगी, इट्स ओके, चॉइस मौजूद है, ताकि अगला भी आपको एंजॉय करे। जब हम किसी के घर जाते हैं ना, तमूमन हम अपना तो बहुत सोच के जाते हैं लेकिन उसका नहीं सोचते। अब आप रात 10 बजे उठे बच्चों को लेके चले गए, हो सकता है उन बेचारों ने आज सिर्फ कबाब बनाए थे वो खत्म हो गए, कभी घर में कुछ भी नहीं होता, और मेरे घर खाने के बाद आप आएंगे तो हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, मैं आपको फ्रेश ही पका के खिलाऊंगी क्योंकि मेरा तो खाना नहीं बचता, मैं तो बनाऊंगी वही जो मैंने खा लिया। अब आप कहेंगे अच्छा जी हमें देखे इंडिया चढ़ाओ जो है वही ले आओ, वे कुछ भी नहीं है क्या लाए, ये हमारे मुआशरे के हम है। यहाँ तो मुझे नहीं पता कि आप लोग जब रिश्तेदारियों में रहते हैं तो किस तरह जाते आते हैं, लेकिन जहां भी हो इसके लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इजाजत ले। और यही मामला सहाबियों का था, यही सहाबियात का भी था। एक सहाबी थे, चंद रिवायतें सुनाती हूँ जिससे बिल्कुल आपको ये मजमून क्लियर हो जाएगा कि सहाबा के साथ भी वो सारे ही हालात होते थे जो आज हमारे आपके साथ होते हैं, और वो उसको कैसे मैनेज करते थे। एक सहाबी है, उनका नाम है अता बिन यसार जी, एक मिनट रीड कर देती हूँ तो बेहतर होगा जी। इमाम मालिक ने इसको मौता में नकल किया है हदीस को, कहते हैं कि अता बिन जुस्सार कहते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी से पूछा क्या मैं अपनी वालदा के पास जाने से पहले भी इजाजत लिया करूं, यानी घर में बस सिर्फ मेरी माँ है तो क्या इस्तेजान लूं? आपने फरमाया इस्तेजान करो। इस शख्स ने कहा या रसूलल्लाह मैं तो अपनी वालदा ही के साथ घर में रहता हूँ, यानी माँ और मैं एक ही घर में, ये भी नहीं कि मैं कभी कभी मिलने जाता हूँ। आपने फरमाया फिर भी इजाजत लिए बगैर ना जाओ? इसने फिर पूछा अल्लाह के नबी मैं तो हर वक्त उनकी खिदमत में रहता हूँ काम करता हूँ उनके, तो आपने फरमाया फिर भी इजाजत लिए बगैर ना जाओ, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि अपनी माँ को बरहना देखो, कभी तुम जाओ कपड़े बदल रही हो शावर ले रही है कंघी कर रही है, कहा ये तो मैं नहीं चाहता। तो फरमाया इसीलिए इस्तेजान हासिल करो क्योंकि कभी कभी घर में जरूरत की वजह से सतर खुले होते हैं, कई किस्म के मामले तो सर कपल की बात से शुरू करते हैं, शोहर बीवी अकेले रहते हैं, क्या सिर्फ बीवी रहती हो तो क्या इस्तेजान किया जाएगा कि नहीं? तो इसमें ये कि ये फर्ज तो नहीं है लेकिन मुस्तहब है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों में आने से पहले जब आप काफी दिन बाद आते थे, जैसे सफर से आते थे, तो क्या करते थे? पहले मस्जिद में चले जाते, वहां से बच्चे को भेजते और कहा कि वो उतनी देर में घर वाले घर को साफ सुथरा कर लें, तैयार जहनी तौर पे हो जाए, फिर आप जाते थे, पहले मस्जिद जाते थे आप। ये कितना प्यारा अमल था। फिर इसी तरह आप देखिए कि आम दिनों में मर्द जैसे घरों में आते हैं तो तरीका क्या है कि थोड़ी सी आहट पैदा करें, खंखार दे, जैसे घर में बेल लगी हुई है तो वैसे बेल कर दे। अब आज तो आपको ये बातें समझ ही नहीं आनी, मिनट मिनट का तो हमारा टेक्स्ट चल रहा था, आप किधर पहुंच गए, किस गली की नुक्कड़ पे हो, ये लिंक रोड पे फंसा हुआ, आप मैं पपड़ के आ गए हो, अब मैं फलाने के आ गए। हमारी तो मुसीबत ही है, गाड़ी भी चलाते हुए भी हम ये कुछ करते हैं, लेकिन हर दौर में ऐसा नहीं होता था और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। खुशी क्या रहेगी आपको पहले ही पता है, एक जो इंतजार की खुशी है वो कितनी प्यारी है। सिर्फ इसलिए भी ना फोन किया करें कि थोड़ा इंतजार करो, पता नहीं अब किधर होंगे, कब आएंगे, कैसे होंगे। और आपको तो कि थोड़ी सी देर से जो मिलते हैं इंसान, तो उसमें मोहब्बत भी होती है। और अगर आखिरी वक्त में भी फोन पर डांट ही रहे हैं, वो भी ले आए, वो भी कर लें, तो उनके घर में आने की आपको खुशी क्यों नहीं है? अपने हस्बैंड को इस तरह वेलकम किया करें जैसे कोई आपका मनपसंद मेहमान आए, और ऐसा मेहमान जो कभी कभी आता है। कहाँ हमारे अंदर ये कल्चर रह गया, फिल्मों में तो दिखाते हैं, हमारे घरों में कहाँ शौहर को रोज अच्छा वेलकम देते हैं? वो बच्चे बेचारे जाके दरवाजा खोल देते हैं और वो पकड़ो पकड़ो, ये चीजें कपाई लगी रहती है हमारे घरों में हर वक्त। मैंने तो जो देखा है हर वक्त की काका की काकी, बहुत कम लगता है कि कोई रोमांटिक माहौल है कि शोहर आए और बीवी फूल पकड़ के खड़ी हो। हुए कभी पड़े खड़े हुए? गोभी कहीं फूल पकड़ा होगा मियाँ ने, वही ले लेंगे, पकाओ इसको। यकीन करें हम वो नहीं जी रहे जो हमें जीना चाहिए, इसीलिए हम परेशान है। सच्ची जो बात है, दीन का काम करने वालों को अपने शौहरों के साथ और शौहरों को बीवियों के साथ बहुत ही ज्यादा ऐसा रहना चाहिए कि जिससे उनको किसी और चीज का ख्याल भी ना आए। तो अब ये सहाबी का अमल सुन लीजिए। अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी कहती है कि अब्दुल्ला जब भी कभी बाहर से घर आते तो दरवाजे में खंखार कर पहले अपने आने से बाखबर कर देते, ताकि वो हमें किसी ऐसी हालत में ना देखें जो इनको पसंद ही ना हो, पाओं की आहट से, खंकार से। और आपने हमारे बड़ों को देखा होगा, नाने दादे खांसते थे बड़ों, फिर लोगों ने उसका भी मजाक उड़ा दिया, गला खराब है क्या? हाँ भी है, कोई आवाज निकाल दे, आहट पैदा कर दे, चाबियों की चनचन है। और आप यकीन करें कि इंसान तो कदमों से पहचान जाता है, गाड़ी रुकने की आवाज से पता चलता है, लेकिन ये एक अच्छे मैनर्स होते हैं कि इस तरह से इजाज किया जाए। इसी तरह इब्ने जुरैज ने हजरत अताल से पूछा कि एक शख्स को अपनी बीवी के पास जाने के वक्त भी इस्तेजान जरूरी है? उन्होंने फरमाया कि नहीं, मतलब यह है कि फर्ज तो नहीं है लेकिन करना चाहिए। अब इजाजत ली कैसे जाए, इसका मसनून तरीका सुन लीजिए, क्योंकि दो लफ्ज है आयत में हमारे सामने, हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु इला अहलिहा। देखा जाए तो इसमें सलाम का लफ्ज पीछे है और उन्स का लफ्ज पहले है, लेकिन असल तरीका क्या है इसको पढ़ सुन लीजिएगा। सबसे पहले जो तरीका होता है वो ये है कि जाकर आप वहां सलाम करें। सलाम कैसे करेंगे? अस्सलामु अलैकुम, और जाहिर आपकी आवाज को भी कोई पहचान लेता है। दूसरी बात है कि अगर आप कभी कभी जाने वाले लोगों में से हैं तो आप नाम ले लीजिए, अपना नाम बोले, ठीक है? सही बुखारी में, सही बुखारी नहीं बल्कि अदबुल मुफरिद किताब इमाम बुखारी की, हजरत अबू हुरैरा से उसमें रिवायत है कि जो शख्स सलाम से पहले इस्तेजान हासिल करे इसको इजाजत ना दो, क्योंकि इसने मसनून तरीके को छोड़ दिया। अबू दाऊद की रिवायत में बनी आमर के एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह इजान किया, बाहर से कहा अलज, क्या मैं दाखिल हो जाऊं, यदि मैं घुस जाऊं? आपने अपने खादम से फरमाया ये तरीका ठीक नहीं है, बाहर जाकर इसको तरीका सिखाओ। गुलाम को भेजा, फिर बाहर गए और कहा, यूं कहे, अस्सलामु अलैकुम अदखलु, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? अभी खादिम बाहर ही नहीं गया था, उस शख्स ने खुद ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही अल्फाज सुन लिए जो खादिम को सिखा रहे थे, तो उसने फिर बाहर से कहा कि अस्सलामु अलैकुम अदखल, क्या मैं दाखिल हो जाऊं? तो आपने उसको इजाजत दे दी, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बहकी की रिवायत है जाबिर से, कि जो शख्स पहले सलाम ना करे इसको अंदर आने की इजाजत ना दो, ठीक है? तो सलाम करके फिर कहेंगे कि आओ ना आओ, 3 दफा तक सलाम किया जाएगा, अस्सलामु अलैकुम, थोड़ा सा नॉक कर दे, कोई नहीं बोला, थोड़ी देर बाद फिर अस्सलामु अलैकुम। फिर इसके बाद आपको वो मारूफ वाक्य याद होगा कि एक सहाबी ने अल्लाह के नबी के घर जाकर, नबी सल्लल्लाहु सॉरी एक सहाबी के घर अल्लाह के नबी गए और आपने उनको पहले सलाम किया, दरवाजा नहीं खोला, थोड़ी देर बाद दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया तो फौरन उसने दरवाजा खोल दिया। तो घर तो इतने छोटे छोटे होते थे उस वक्त, शायद वो दरवाजे के अंदर ही कमरे में थे, तो आपने कहा कि पहली दफा पे तुमने क्यों नहीं खोल दिया? कहा, मैं आपके सलाम का जवाब अंदर दे रहा था, अगर मैं पहली दफा में दरवाजा खोल देता तो आप उसके दूसरे और तीसरे सलाम की बरकत से महरूम हो जाता। और ये मुझे पता था कि आप 3 दफा सलाम किए बगैर नहीं जाएंगे। ये होते हैं ना नेकियों के ढूंढने वाले कि वो छोटी छोटी नेकियों को ले लेते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि सलाम के लफ्ज जो है वो बोलने चाहिए। और इसमें तरीका कोई भी हो, हदीस में वैसे भी आता है सलाम कबल कलाम, अपना लोगो बना लीजिए अपने घर में बोलने की बात, जब भी मिले एक कमरे से दूसरे में है, सुबह उठ के आते हैं अस्सलाम वालेकुम, कलाम सलाम से पहले करें ना। अगला बंदा अगर कर ले जवाब भी ना दे, वो कहेगा क्या हुआ, फिर याद आएगा सलाम नहीं, आपने सलाम नहीं किया। छोटे छोटे बच्चों को सुबह उठते हैं देखें अस्सलाम वालेकुम, बाद लोग बच्चे को कहते तुम सलाम करो, फिर वो बच्चे शर्मा के नहीं करते, फिर हम कहते देखो कितना खराब है सलाम नहीं करता। सिखाना है तो खुद सलाम कीजिए, बेहतरीन तरीके से सलाम करें। इसी तरह एक और वाक्य सुन लीजिए, किसी का वाक्य नामों में उलझन आ जाती है। कहते हैं कि मैं बसरा गया तो मुगीरा बिन शोबा की मुलाकात को हाजिर हुआ। सहाबी थे मुगीरा, दरवाजे पर दस्तक दी, मुगीरा ने अंदर से पूछा कौन है, मैंने जवाब दिया अना, मैं हूं, जैसे हम उर्दू में कि मैं हूं, तो मुगीरा ने फरमाया मेरे दोस्तों में कोई भी ऐसा ना नहीं जिसका नाम अना हो। आप फिर यानी नाम लेना चाहिए, अना नहीं कहना चाहिए। फिर बाहर तशरीफ लाए और इनको हदीस सुनाई कि एक रोज हजरत जाबिर नबी सल्लम की खिदमत में दाखिल हुए, इजाजत लेने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी, तो अल्लाह के नबी ने अंदर से पूछा कौन साहेब है, तो जाबिर ने कहा कि अना, तो आपने उनको डांटने के लिए कहा अना अना, यानी अना अना कहता तुम अना तो मैं भी अना हूं, यानी मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो आज भी ये जो हम कहते हैं ना मैं हूं, अच्छा अभी यानी बाज़ जवाब हम ये सोचते हैं कि दूसरा बंदा हमें बहुत जानता है भी, आपका आप हो सकता है किसी को आपकी आवाज की पहचान ना हो। जैसे किसी को मैं कहूँ आप क्लास लें, क्लास में होती हूँ, कहते हाँ मैं क्लास में होती हूँ, मेरा सबको पता है। भाई आप इतनी मशहूर तो नहीं है कि सबको आपका पता है, आप अपनी जब स्टूडेंट आईडी से आएंगी फिर आप किसी तरह भी अपना हिसाब किताब देंगी, तभी लोग आपको पहचानेंगे ना। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए मैं हूं। अच्छा अब एक ये कि रोज जो आते हैं लोग घर में, आप उनकी आवाज से भी बता, अब आप उनसे भी के पहले नाम बताएं, अच्छा आपके अब्बू का क्या नाम है, सलाम करें, तो मुराद ये नहीं है। एक तरीका क्या होता है कि जो सिखाने का तरीका होता है, एक आम तरीके पे जो बात हो जाती है तो तरीके से बात करें। इसी तरह कुछ लोग नबी सल्लम के दरवाजे पर आते थे नाखनों से, ये जो होती है ना टिप्स, इससे टिक ऐसे नाखनों से दस्तक देते थे ताकि नबी सल्लम को तकलीफ ना हो, ये कुर्तुबी की रिवायत है। तो गोया के पास लोग ऐसे भी थे, यानी बहुत सारे लोगों का तरीका है लेकिन तफसील ज्यादा हो रही है, लेकिन यह कि जैसे दीनदारों के पास आते थे तो दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, नॉक नहीं करते थे इस खौफ से कि शायद सो रहे हो, शायद किसी काम में हो, शायद वो हमारी वजह से डिस्टर्ब हो, जब खुद उठेंगे जब खुद दरवाजा खोलेंगे तो हम देख लेंगे। तो बहरहाल इससे आप देखिए कि इस्लाम कितना ज्यादा दूसरों की मदद करता है। और वही हदीस के ला दरर वला दरार, ना तुम किसी को तकलीफ दो ना कोई तुम्हें तकलीफ दे, तो ये चीज बेहतर तरीके से अमल करने की है। और आप देखेंगे कि जो लोग इस पे अमल करते हैं वो बहुत ही कामयाब रहते हैं। चलिए आज के दौर में घंटियां होती हैं दरवाजे पे, 1 घंटी 2 सेकंड बाद दूसरी घंटी, 2 सेकंड बाद तीसरी घंटी, और कुछ तो घंटी पर बटन पर हाथ ही रख लेते हैं। अपने मुल्कों में सोचिए घर के साथ घर जुड़ा होता है, कोठियां होती हैं, फिर कहते हमने इतनी घंटियां दी, साथ वालों का चौकीदार आ गया, आपको कोई जरूरत नहीं थी इतनी घंटियां देने की, घंटी बदल जाए। और आप देखिए खानदानों में कोई ना कोई एक दो बंदा ऐसा जरूर होता है जो घंटी पे हाथ रखे तो सब समझ जाते फुला आ गए, ये मायूब बात है, ये भी किसी को तकलीफ देने की बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि आप किसी को मिलने जाते हैं कैसे जाएं, कोई नई जगह है, कोई आप किसी को कहीं इदारे में गए, आप अपना कार्ड दे दें, आप उनको पहले से मैसेज करते हैं मैं जो बेस्ट तरीका, कहीं भी जाना है चाहे आपने ऑफिशियल कामों पे जाना है पर्सनल कामों पे जाना है, पहले से अगला आपके लिए मुतमईन हो, मुंतजिर हो और आपके लिए वो पूरी तरह से जहनी जिस्मानी तौर पर राजी हो तो फिर आओ। अच्छा अब ये जो बात है वह इनकी अलक उम्र जी फर्ज हो अजकालकुम, ये बात किसको समझ आएगी। हमारे असलाफ में कुछ लोग थे, कहते हैं कि मैं उम्र भर इस बात की तमन्ना में रहा कि मैं किसी के घर जाऊं, फिर मैं उससे इजाजत तलब करूं और वो अंदर से मुझे कह दे कि फर्ज हो अभी लौट जाओ, तो मैं कुरान के इस हुक्म पर अमल के लिए मैं वहां से खुशी से आ जाऊं, लेकिन मुझे ये सारी जिंदगी नेमत नसीब नहीं हुई। आप जरा अपने ऊपर लिख के पूछिए खुद से, अगर मुझे किसी से ये जवाब मिले तो मेरा उस पर क्या रवैया होगा, आज के बाद नहीं आऊंगी इनके घर, इनको तो खुशी नहीं हुई, हम तो जाते हैं तो फिर साथ देखते हैं मुस्कुराई नहीं मुझे देख के, शायद हो सकता है बेचारी के दांत में दर्द हो, हो सकता है कोई बुरी खबर सुन के बैठा हो पाकिस्तान से, किसी का दिल दुखी हो, हम चाहते हैं हम जाएं और अगला पूरी तरह हमारे साथ मामला करें। अब इसी मौजू के ऊपर चूंकि हम ये बात इतनी अपने अमल के लिए समझ रहे हैं, तो यहां से फिर कुछ मेहमान के हकूक है वो भी नोट कर लें, जिसको आप कह सकते हैं कि इस्लाम हमारा इतना खूबसूरत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन नली जोर का अलही का हकन, तेरे मेहमान का भी तुझ पर हक है। तो उसका हक क्या है कि उसको अपने पास बुलाओ या बाहर आकर उससे मिलो, इसका इकराम करो, इसकी बात सुनो, कोई मजबूरी है उसकी, कोई बात है तो उसको दूर करो, और अगर कोई उजर है तुम्हारे पास तो उसको दूर करके उससे मुलाकात करो। आप देखिए कि आज के दौर में वही बात है कि ये बात कल्चरल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, इंडियन भी होगा ऑफ कोर्स उसमें भी, अभी तक इस चीज की बहुत बात है कि मेहमान नवाजियां बहुत करते हैं। लेकिन अगर हम उसको कुरान और सुन्नत की नहज में डाल के देखें ना, तो अमूमन कुछ खराबियां हमारे साथ। दावत पका रहे हैं क्यों? खाई जो है तो पकानी भी पड़ेगी। कितना मारूफ जुमला है, बिल्कुल इस्लामिक नहीं है। ला तमनुन तस्तकसिर, अल्लाह ताला कहते हैं किसी को ना दो ज्यादा लेने की उम्मीद पे। अगर आपने खाना खिलाना है ना किसी को, सिर्फ खिलाते हो तो, कल मैंने एक हदीस पढ़ाई थी ऑनलाइन पे, क्योंकि यहाँ बुखारी का सेशन नहीं हुआ तो मैंने अगला सेशन पे कल लाइव किया, तो उसमें हमने बड़ी तफसील से बात की थी खाने पकाने की, क्योंकि उस वक्त मैं खाने ही पका के उठी थी और उसके बाद ये सबक पढ़ा दिया, तो मैंने इंजॉय किया इस बात को कि खाना खिलाना कितनी बड़ी दौलत है और कितना मजा आता है और कितनी खुशी मिलती है उसके बाद जब कोई आपके हाथ से खाना खाता है। लेकिन ये है कि आप इसको इसलिए खिला दें कि जी मजबूरी है, परेशानी है, बाज औरतें कोसती रहती हैं, हर वक्त चूल्हा ही नहीं बंद होता, इनकी चाय खत्म नहीं होती, इनके पानी नहीं खत्म होता, अब इनको ये खिला दो, अब इनको रोटी पका के दो, खुशी के साथ खिलाएं। जितना कोई मेहमान को खुशी से खिलाएगा आपको पता है उतना अल्लाह ताला उसके साथ मोहब्बत करेगा। अरबों के कल्चर में ये बात थी कि उनके घर से अगर कोई बिन खाए चला जाता था तो उसको दुश्मनी पे कयास करते थे, जब बुरी नीयत से आए हुए पे कयास करते थे। तो मेहमान का हक है स्माइली, खुशी से मिले। कभी हर वक्त भी तो हर मेहमान ये कुरान की आयत नहीं पढ़ के आया होता ना, हो सकता है कोई बेवकत आ जाए, हो सकता है कि कोई आपसे इजाजत ना ले, आप उसके लिए उन्स नहीं फील करें, लेकिन पूरी खुशी से खंदा पेशानी से मिले, घर में जो है उसको पेश कर दे, उसका उजर समझे। अगर वो चाह रहा है कि आपके साथ अकेला बैठे तो अकेले बैठाए, फिर आप देखिए अगर औरतें और मर्द हैं तो सुकून से औरतों को अलग बिठाएं ताकि वो खुल के आपके साथ बात कर सके, मर्दों को मर्दों में बिठाएं। घर में जो चीज है हैसियत की उनको खिलाएं, हैसियत से ज्यादा खिलाएं। हदीस में आता है कि पहले दिन का खाना अपनी कोशिश से अच्छा बनाओ, दूसरे दिन का भी कुछ अच्छा, तीसरे दिन के बाद अगर मेहमान फिर आपके पास टिकता है तो उसको घर के खाने में शामिल कर लो। मेहमान का हक इतना है कि अगर कोई किसी को ना पूछे तो वो उसका शिकवा कर सकता है बाहर जाके। सूरत आपको याद है, मायदा में भी हमने सूरह निसा थी छठे पारे की पहली आयत में पढ़ा, और इसी तरह फिर हमने सूरह काहफ में पढ़ा कि उन्होंने उनकी मेहमानी ना की। मेहमान अगर किसी को ना खिलाए, मेहमानी का हक अदा ना करे, तो वो शख्स उसके बारे में जाके उसपे मतलब गिला कर सकता है, क्योंकि पहले दौर में सिर्फ होटल्स और ये सब कुछ नहीं होती थी, तो लिहाजा जरूरत है इस बात की कि अच्छे हों, आपका दस्तरखान खुला होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा बनाए, ज्यादा नहीं कि जाया फेंकना नहीं है। मिसाल है कि आप देखिए कि औरतें मर्द अलग हैं, अब दो डिशों में डाल देना, आम से ज्यादा पका रहे हैं, गिन गिन के एक एक बंदे को गिन के पकाना ये मायूब बात है, खुले दिल से बताएं। और इस तरह से मैनेज करें कि उस खाने को बाद में सेव करें, वैसे भी तो हम फ्रीजरों के खाते हैं और फ्रिज में हमारे होते हैं, उस खाने को बाद में 2 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहे, लेकिन बहुत कंजूसी के साथ खाना नहीं रखना चाहिए। मैं एक ऐसे आलिम को जानती हूँ कि जो सिर्फ इस वजह से किसी के रिश्ते के मामले में कहीं गए थे, तो उस बारे में जब उन्होंने ना की तो जो बात थी उसके उन्होंने उसमें ये बात की थी कि जब ऐसे मौकों पे उनका मिजाज ऐसा था कंजूसी का, तो बाद में हमारी बेटी के साथ वो पता नहीं कैसा करेंगे, यानी बेटी को देना था उन्होंने उधर। तो बहरहाल ये चीज असर रखती है, और ये कल्चरल भी होता है, ये खानदानी भी होता है, इसमें बहुत सारे हैं। हमने ना तो कल्चर के लिए करना है, ना खानदान के लिए करना है, ना बिरादरी के लिए करना है, और ना कर्जे उठा के करना है, ये भी एक बुरी बात है। फिर बाज लोग सिर्फ दावतों की वजह से जेरे बाहर रहते हैं, कर्जों में चले जाते हैं, जो कर सकते हैं कर दें। और मेरा ख्याल है कि आपका बहुत कुछ पकाया हुआ अगले को इतना खुश नहीं करता जितना आपका स्माइल। इंजॉय करें। एक और हम औरतों में बड़ी बुरी आदत है, और वो क्या कि मेहमान को बिठा के हम किचन में घुस जाती है, अब वो बैठे हैं, कभी अखबार देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, घर में कोई दूसरा होता नहीं, और आप कबाब तल रही हैं, आप समोसे तल रही हैं, आप प्लेटें निकाल रही हैं, अगला शर्म से बैठा रहता है, मैं क्यों आया, मैंने इनको डिस्टर्ब किया, बाद में पता चलता है जी वो आपके लिए खाने का अरेंज करने लग गई। बहुत ही गलत बात है। अगर ऐसा कोई मामला आपके साथ हो, आप उस सिस्टर को साथ किचन में ले जाए, क्योंकि आने वाले को आपकी जरूरत होती है नहीं, और इससे भी लग रहा है कि आप बगैर बताए गए हैं। तो बहुत सारी माशरती चीजें हैं जिसको अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में लें तो बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हमारी इसलाह होगी, और आप देखेंगे कि जब हम दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे तो दूसरा भी हमें तकलीफ नहीं देगा। खाने पे अगर कोई बुलाए तो उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसी सूरत के एंड पे आएगा। खाने से पहले आए जब अगले ने टाइम दिए, और खाने के फौरन बाद जब आपको फील हो कि अब बस काम पूरा हो गया, उठ के चले जाए। बाद में बैठना और दांतने और अब चाय और पान और चा लिया और अब रात जागेंगे, और मैं औरत जो सारे दिन की थकी आ रही होती बेचारी वो बाद में और थक जाती है। तो बहरहाल ये चंद बातें थी जो हमारे अपने अमल की बातें थी। इसके बाद अब आप देखिए कि इसमें जो बात है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को आजाद पैदा किया, और उसकी आजादी में खलल डालना जुल्म है। इस्लाम किसी के साथ भी ऐसे जुल्म को पसंद नहीं करता। आज अमूमन आप देखिए कि जब हम अपने मुल्कों में जाते हैं, बावजूद इतनी नेमतों के, लोगों में चिड़चिड़ापन होता है, खुरदरे खुरदरे रहते हैं, ताल्लुकात कशीदा, उसकी वजह ये होगी। बाज़ वो पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन सिर्फ इसलिए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है इतना ज्यादा उनके पास रिस्क है, तो मेहमान आए तो पूछते नहीं, बाद में किसी को पूछे क्यों, कहते हैं वो फिर इतनी प्लेटें भर जाएंगी, फिर इतना बाद में उठाना पड़ेगा। पड़ा हुआ घर में सिर्फ इसलिए नहीं चाय के साथ पूछा, चाय नहीं पूछी के बर्तन बहुत फैल जाएंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये भी मायूब बात है। और जब सिर्फ डिस्प्ले की बात होती है तो वो ठीक बात नहीं होती। और यहां से अब वाकिफ की बात को भी जहन पे रख के आगे चलते हैं हम लोग इस बारे में कि किस तरह से एक इंसान अपने आप को दूसरों के लिए खुशी का जरिया बनाता है और बेहतरीन तरीके से बात करता है। और इंशाल्लाह जब हम इन चीजों को अपने बच्चों में डालें, अब यहाँ छोटी सी बात कर दूं आगे आएगी इसी सूरत में आएगी, लेकिन यहाँ उसका हल्का सा इशारा मकसूद है कि बच्चे, आपके अपने बच्चे जब घर में कमरे से दूसरे कमरे में आते हैं तो उनको भी सरेआम ऐसे नहीं आना चाहिए। ये बात आज नोट कर लें, 2-3 दिन के बाद दोबारा इसके बारे में बकायदा और भी एक आयत आएगी। लेकिन जिस तरह घर के अंदर बाहर से आना होता है ना, इसी तरह घर में रहते हुए भी दूसरे लोग, मतलब घर में बहू बेटा रहते हैं, आप सास हैं, अब आप ऐसे उठ के चले जाएंगे, बेटा बेटा कहते साथ ही पर्दा हटाए अंदर चले गए, नहीं, नॉक करें, बात करें, तरीके से करें। बहुत ही बुरी बात होती है, बस जब हम रिश्तों के नाम पे दूसरों का जीना धोबर कर देते हैं। इसी तरह छोटे बच्चे जब दिल चाहता है उठते हैं, रात को तकिया उठाए माँ बाप के कमरे में चले गए, गलत बात है। उनको इस चीज के एटिकेट्स होने चाहिए कि ये तरीका ठीक नहीं है। इसी तरह से आप भी छुप छुप के अपने बच्चों की CIDs ना करें। बस दफा टो लेने के लिए बस मर्द सिर्फ इसलिए बगैर बताए आते हैं कि देखें इस वक्त घर में क्या हो रहा है, ये भी शक्की मिजाज होना है। इस्लाम क्या चाहता है कि खुले दिल के साथ दूसरों को मिलो और दूसरों के साथ इस तरह फील करो कि जैसे तुम उसकी तरफ करना चाहते हो। इंशाल्लाह जब हम इन चीजों का अपनी जिंदगी में बना लेंगे, जगह देंगे, तो बहुत फायदा होगा। चलिए, ये तो हो गया किसी के घर में जाना आना, ये तो बात सिंपल है। पहले तो जाना पड़ता था, अब तो जाना भी नहीं पड़ता। घर बैठे भी हम दूसरों के घर में घुसते हैं, और वो क्या है, आज के दौर का टेलीफोन। कहते थे कि खत होता है तो आधी मुलाकात हो जाती है, तो टेलीफोन से पौनी मुलाकात हो जाती है। टेलीफोन करने के भी तरीके होने चाहिए। आप देखिए कि जब किसी के घर जाकर आप सलाम करेंगे तो फोन करेंगे तो भी सलाम करेंगे, 3 दफा आपने पूछ के वापस आ जाना है तो टेलीफोन करते वक्त अगर आप किसी को करें तो देखिए, नंबर 1 कि सोने का वक्त तो नहीं, नमाज का वक्त तो नहीं है, शावर तो नहीं कोई ले रहे होंगे, बच्चों को नाश्ता देने का वक्त तो नहीं है, और फिर बेलों पे बेले, बेलों पे बेले, बेलों पे बेले, और अगर कोई उठा ले कहते बस 1 मिनट बात करूंगी, और उनका अंडा फ्राई हो रहा होता है वो जल गया और रोटी जल गई, और आप 1 मिनट, जब 15 मिनट बात करते हैं, बाद में जब बुआ आती, हाय मेरा तो खाना जल गया, इंतहाई गैर मुहज्जब बात है। इस्लाम से ज्यादा डिसेंट रिलीजन दुनिया में कोई नहीं है। आप देखिए कि जब टेलीफोन की बेल बजती है ना, तो शौरी तौर पर इंसान कॉन्शियस हो जाता है। आपने अगर फोन किया, अगर आप, सच्ची बात है, बड़े प्रोटोकॉल वाले लोग हैं, तो बेस्ट थिंग तो कि किसी को फोन करने से पहले टेक्स्ट मैसेज करें, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज इतना नहीं बंदे को सताता जितना टेलीफोन की बेल सताती है। और अगर आपको लगता है टेक्स्ट मैसेज मुश्किल है, तो पहले 1 बेल कर दें हल्की सी और खामोश हो जाए, फिर उसके बाद फिर 2-4 मिनट के बाद दोबारा करें, 3 बल्ले मेरा हल है, मोर देन एनफ होती है कि फोन आजकल तो हाथों में ही होते हैं। अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा, अगर फोन उठा सकता है, तो वो 3 बल्ले। अच्छा, आपने किया, उसने थोड़ी देर बाद आप महसूस करें, हो सकता है उस वक्त वॉशरूम में थे, अब बाहर निकल आए होंगे और अब उनके पास क्रेडिट नहीं है, तो 15 मिनट बाद दोबारा कर लें, समझ आ जाएगी आपको। अगर कोई बंदा फोन आपको जवाब में उठा ही नहीं रहा दूरा, तो समझ जाए कि इस वक्त वो फोन करने उठाने के लेवल पे नहीं है। दो एक्सट्रीम है हमारे यहाँ, फोन करने ले बेलों पे बेले करते रहते हैं करते रहते हैं, 8-10 बेले और नमाज मुहाल। बस अब आप देखते नहीं मस्जिदों में सिस्टर्स के फोन खुले रहते हैं, और अल्लाह रहम करे बेले भी म्यूजिक वाली होती है, पूरी नमाज म्यूजिक के साथ चलती है। वल्लाह ये ऐसा कई दफा हुआ, रोना आ रहा होता है कि हम ये कौन सा कुरान सुन रहे हैं इस वक्त जिसमें साथ में ये आवाजें चल रही हैं। और दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि आपके फोन की बेलें बज रही हैं, आप नहीं उठाते, ये भी बहुत बैड थिंग है, ये भी इंतहाई गैर जरूरी बात है। और आजकल देखिए जितने गैजेट्स आ गए उतनी हमारे दिलों से कदरें निकल गई, नाम देख के कहते रहने दो मेरे मूड मेरा नहीं मूड, आप नहीं उठा सकते, नहीं उठाना ना, आप उनको एक हल्का सा टेक्स्ट कर दे, आई कैंट, ये इस वक्त नहीं, इस वक्त या पॉसिबल नहीं या कुछ। कभी कभी ऐसा जहाँ क्लास में अक्सर फोन पे बैकअप की रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, तो फोन मेरे सामने ही होता है, बीच में कोई बेल आ जाती है, तो जब किसी की बाहर से बेल आती है तो रिकॉर्डिंग तो कुदरती तौर पर बंद हो जाती है ना, वैसे फोन मेरा मोड में होता है, लेकिन कभी कुछ जरूरत आपस में रबते के लिए खुला रखा होता है तो मैं उसको साइलेंट पे कर देती हूँ। अब क्या होता है जो इस वक्त फोन करे ये तो मैं 100% समझ जाऊंगी ये कोई स्टूडेंट नहीं है। सुबह के वक्त में जब भी मुझे कोई फोन करे, यानी आप यहाँ क्लास में आने से लेकर क्लास के दौरान, तो चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते से आ जाए, ये मुझे यकीन होता है वो स्टूडेंट नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट उठाए तो मुझे अपने साथियों में तो फिक्र लग जाती है कि अल्लाह रहम करे कोई मसला है, पैल्टो काम नहीं कर रहा, दिस एंड दैट है। क्लास के दौरान कोई फोन करता है तो मैं उसको खोल देती हूँ। अब क्यों खोलती हूँ, कि उसको पता चल जाए कि मैं इस वक्त क्लास में हूँ। अच्छा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना, वो बेलें बजेंगी, अगर मैं उसको कैंसिल करूंगी फिर दोबारा फोन शुरू हो जाएगा। बस लोग समझते ही नहीं है कि इस वक्त नहीं कर रहे, तो कई लोग ऐसे हैं माशाल्लाह कि जब वो बीच में खोलती है तो 2-2, 3-3 मिनट, और कई दफा तो मुझे ऐसी याद है कि एक फोन पे हमने 1 घंटे से ज्यादा का, बल्कि इधर ही यूके में दर्स था कहीं, मेरा लिस्ट के घर, तो यूके लंदन अमेरिका से फोन आ गया उनका सिस्टर का ना, तो मैंने खोल दिया, पूरा दर्स उन्होंने सुना, और एंड पे फिर उनसे हमने शेयरिंग भी कराई, तो वो इतनी खुश थी कि मुझे आपने पूरा दर्स सुना दिया और मौजू भी उनकी पसंद का था। तो हमेशा लोगों को रिस्पॉन्स दें, ये बहुत कुछ मर्दों की भी बड़ी बुरी आदत होती है, और आपको यकीन होता है उन्होंने फोन उठाना कोई नहीं है, तो ये भी अगले बंदे को मिसट्रीट करना है। एक और खराबी है इसमें, और वो क्या है, अब आप देखिए आप कहेंगे ये कोई बातें सिखाने वाली बच्चों वाली बातें, लेकिन क्या फीस माना हमारे अंदर ये खराबियां हैं कि नहीं। मिसाल है कि आप मुझे फोन कर रहे हैं, आप किधर है, और मैं नीचे सीढ़ी में थी, क्या मुझे आपका फोन उठा के कहना चाहिए बस मैं आ रही हूँ सीढ़ी में हूँ? कभी भी नहीं उठाना चाहिए, मैं आपका 1 मिनट क्यों जाया करूं, आ रही हूँ भाई, अभी 3-4-10 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मैं आ गई हूँ। बाहर से दरवाजे पे खड़े होते हैं बाहर, लोग का चलता है कि जी वो बस आ रहा हूँ, सारा दिन इतने हमारे एक्स्ट्रा मिनट्स वेस्ट होते हैं। बस जब आप देखिए कि हमारे फोन इसलिए टाइम ज्यादा होता है, आप देखिए बाज लोग अनलिमिटेड पैकेजेस लेते हैं, मनी को छोड़ दीजिए एक दफा, लेकिन अनलिमिटेड पैकेजेस जो होते हैं ना उसके अंदर नुकसान क्या होता है कि आपको कैरी नहीं होती, कर रहे हैं छोड़ रहे हैं तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, आप पैसे दे ना दे लेकिन वो सारी एनर्जी तो यूज हो रही है, आपका बिजली यूज हो रही है फोन से। तो फोन उठाते वक्त या करते वक्त ये देख लीजिए कि जरूरत कितनी है, थोड़ा सा सब्र और तहमल भी जरूरी है। इस वक्त मियाँ कहाँ होंगे, अच्छा मस्जिद में होंगे, अच्छा नमाज हो रही थी, अच्छा इसके बाद घर आने तक कितना वक्त लगता है, अच्छा इस वक्त सीढ़ियों में होंगे, अंदाजा करके जब आपको लगे कि अनयूजुअली 10-15 मिनट ऊपर हो गए फिर कॉल कर ले। बाज दफा अच्छा मजे की बात है, हमारे पाकिस्तानी लोग होते भी बड़े अक्लमंद है, तो वो जैसे कहते हैं कि एक पैकेज था अमेरिका की बात है ये, कोई उन्होंने इस तरह का पैकेज रखा हुआ था कि आप किसी को फोन अगर करें, और फोन कर तो सकते थे और जब अगला बंदा उठाता है तो पैसे पड़ते हैं, वैसे नहीं पड़ते, ये आपको हर एक को पता है। तो हमारे पाकिस्तानियों ने आपस में क्या रखा हुआ था, वहां पहुंच के मिस कॉल दे देना। अच्छा वो मिस कॉल देते थे तो खबर मिल जाती थी कि पहुंच गया, उठाते नहीं थे तो पैसे लगते हैं, यानी कुछ किस्म की एक चीज थी, इससे मिस यूज भी उन्होंने किया, काम भी कर दिया, पता भी चल गया पहुंच गई और पैसे भी नहीं पड़े। तो बहरहाल आप देखिए कि चीजों को, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। बेकार हर वक्त इन चीजों को अपने हिसाब से लेकर इन चीजों में ना रखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आप लोगों के मामला जो है वो काफी हद तक बेहतर होंगे। लंबी बात नहीं करनी चाहिए फोन पे। जब आपका फोन बंद हो तो फिर आप क्या करें, मैं आपको एक पैकेज बताऊं, अगर आप में से किसी के पास नहीं, बड़ा मजे का पैकेज है। पिछले महीने जब हम लोगों ने सफर पे जाना था तो मेरा मंथ का पैकेज खत्म हो गया। हम इस तरह के फालतू पैसे जाया नहीं करना चाहते कि आज लिए और फिर बाहर चले गए तो पूरा महीना, चाहे 10 पाउंड ही है, आप इतने क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं सोचूं कि वो 10 पाउंड किसी मस्जिद में जाते तो मेरे लिए सदका जारिया होता। खैर किस्सा मुखसर के कोई कॉल ऐसी करनी थी तो इन्होंने एक पैकेज लिया, तो मुझे इन्होंने बताया कि ये वो नहीं है जो पूरे है मंथ का, लेकिन इसका तरीका क्या है कि जब आपको कोई कॉल करता है ना तो आपको मिनट मिलते हैं। आपको पता है ये पैकेज का मिनिमम पैकेज है 5 पाउंड का आता है। गिफ्ट कैप कंपनी अगर सिम है आपके पास, वो मिनिमम 60 मिनट से शुरू होता है, ठीक है, और शायद 300 SMS आपको वो देते हैं, और थोड़ा सा वो आपको गीगाबाइट इसका देते हैं, MG थोड़ा सा इंटरनेट यूज करने का। तरीका उसका क्या होता है कि आप यूज करेंगे तो आपका वो मिनट यूज हो जाएगा, और SMS करेंगे वो भी करते हैं, लेकिन आपको कोई कॉल करता है जितने मिनट कोई आपको फोन करता है ना उतने मिनट आपको ऐड हो जाते हैं। मजे की बात बताऊं कि बास लोग लंबी कॉल करते हैं तो गुस्सा आता है ना, तो मेरे पास जब वो पैकेज था एक ही दिन में मेरे मिनट डबल से भी ज्यादा हो गए। मैं इतना हंसी, मैंने कहा कि ये देखिए ये, यानी जिस दिन मेरा वो पैकेज खत्म हुआ एक्सपायर हुआ ना उस दिन मेरे पास 200 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा मिनट थे, और मैंने खरीदे कितने थे, 60। होता क्या, लोग मुझे कॉल करते हैं, अब अक्सर मैं करती हूँ जब मुझे जरूरत होती है, लेकिन एक आधे मिनट की कॉल होती है, मेरे तो इतने यूज भी नहीं होते। दूसरे करते हैं जब बात करती हूँ तो भी बाद में वो कहते हैं गुड, खैर बहुत अच्छी, वो आगे ना कोटेशन भी भेजते हैं, वेल डन, वेरी गुड, तुम्हारा क्या आज, अब तुम्हारे में चले गए। तो मैं हंसती थी कि लोग यूज करते हैं तो कम होते हैं और यूज करते हैं तो वो ज्यादा, मतलब मेरे ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अब अगर आप कहते हैं वो 10 का ये 5 का फर्क है, फर्क जरूरत क्या। वैसे भी जब मैं खुद भी करती हूँ तो मेरे मुझे अक्सर दूसरे ही कर रहे होते हैं, और मैं इनसे पूछूं भी, ये कहते हैं जी हमारे पास अनलिमिटेड है, इरम ने तो पता नहीं कितने को लिए होते हैं मिनट्स हैं। लेकिन बहरहाल ये छोटी छोटी बातें आपको बताती हूँ कि वाइसली अपनी मनी को यूज करेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा इंशाल्लाह, वेस्ट ना करें। और बाज दफा जब आखिरी दिन रह जाता है, अब कभी ऐसा भी होता है, ये भी आपको एक अंदर की बात बताऊं, अब मुझे पता है कल मेरा पैकेज यूज हो खत्म हो जाना, अब 200 300 जितने भी मिनट्स हैं, तो फिर क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड ने कोई नंबर अपने रखे होते हैं ना जो नॉन न्यू मुस्लिम या जिनको दीन के, तो आखिरी दिन फिर उनसे घंटों बात कर देते हैं कि हम क्यों कंपनी को फालतू मिनट दें, क्योंकि हमने पे किया, तो वो फिर वो मिनट्स किसी अच्छे दावा के काम में या सदका जारिया में यूज करके फिर उसको खत्म करना। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, आप कहेंगे ये कितने कंजूस हैं, लेकिन बहरहाल आप देखिए कि जिंदगी जी ना वो मैं कहती हूँ कि आप लाखों भी खर्च करते हैं और आपको अफसोस ना हो, लेकिन एक पैनी भी अगर आपकी गलत जगह पे जाया हो तो वो चाहे टाइम की सूरत में हो चाहे माल की सूरत में हो, ये इंसान को जाया कर देती है। कोई बात जो आपके जहन में ये इजाजत लेने देने की रह गई है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अगला मौजू बिल्कुल फर्क है। बल्कि मैं तो ये सोचूंगी कि अगर ब्रेक लेनी है तो अभी ले लें, या अगर जैसे भी आप लोग चाहें। जी आप इशरत, ऑनलाइन वाले भी लिख सकते हैं। जी ये इनका अच्छा सवाल है, बल्कि ये बात रह गई थी, मैंने इशारतन जिक्र किया लेकिन खुल के बात नहीं हुई। जब आप खुद जाती हैं अपने घर तो कैसे जाएं, हदीस में आता है कि जब घर जाएं घर खोले और ऊंची आवाज से कहें अस्सलामु अलैकुम, ना सिर्फ ये कि खाली घर, इवन बात तो ऐसा मैंने खुद भी आजमाया है, एक आध दफा ऐसा मौका हुआ कि जब आप घर में जाते हैं ना तो दरवाजा खोले सीधा पाँव अंदर रखें और साथ ही कहें अस्सलामु अलैकुम, फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह की दूसरी मखलूकात जवाब देती है। एक इसका ये फायदा होता है, दूसरा एक और फायदा भी होता है कि घर में हो सकता है कोई सोया हो, आपका देवर है, कोई घर का गैर मर्द है, आप सोचते हैं घर में कोई नहीं, आप जाती अपना बाया उतारते हैं, स्कार्फ उतारते हैं, एकदम वो अंदर से आ जाते हैं, खौफ भी आ सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह बाज दफा आप बच्चे आपके शौहर घर में आए, हर एक यही हमारे घर में पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह, दरवाजा खुलने के वो फौरन सलाम की आवाज आएगी, समझ आ जाता है। अच्छा अगला बंदा जवाब ना दे तो ये भी पता चल जाता है या तो वो नमाज में या वॉशरूम में हो सकता है। तो जब भी खाली घरों में जाएं कहीं भी जाएं तो आप भी ऊंची आवाज से अस्सलाम वालेकुम कहें, ठीक है, और आगे से अगर किसी का जवाब आ जाए तो परेशान ना हो, अल्लाह की और मखलूकात भी होती है। जी, और कोई इस मौजू से मुतल्लिक बात है तो पूछ सकते हैं। जी आप ही रहे हम। जी आजकल इनका सवाल है कि बेल सिस्टम में सलाम का नहीं है, तो उसका तरीका ये कि आप बेल करें, जब कोई पूछे अंदर से, अगर पूछता है कोई इंटरकॉम पे पूछता है तो फिर ये तरीका करें, फिर शायद फायदे की होगी। बात सब होता है कि घर के बच्चे दरवाजा खोल देते हैं, आप कहीं जाएं और उनके बच्चे ने दरवाजा खोल दिया, कभी भी ना दाखिल हो, बच्चे ना समझ होते हैं बेल देख खोल दी, हो सकता है बड़े उस वक्त इस मूड में ना हो, इस तरह ना हो, तो घर का कोई दीवाना या ऐसे बुद्धू सा नौकर या बच्चा भी खोल दे, तो उन्हें के अंदर पता है उनको, बात सब लोग कहते हैं आ जाए आ जाए, और बच्चे तो खुद ही कह रहे होते हैं आ जाए आ जाए, आप बैठे आपके साथ तुम्हें भी अब कोक मिलेगी, बच्चे तो खुश हो रहे होते हैं मेहमानों के आने पर। तो कभी किसी के, मैं ऐसा कहीं ना पाऊंगा किसी के घर जाए बच्चा खोल दे, मैं अंदर नहीं होती या वहीं गली में खड़ी होती हूँ, मम्मी को बुलाओ, अम्मी को पता कि तुमने डोर खोला है, तो ये भी चीज नजर में रखने की है। जी और ये बोझल हुक्म है अमल करने के इतबार से। जी आप राहिला पीछे से, तो वो खुश तो कभी भी नहीं होंगे इस बात से, ये कहती हैं। जी ये कहती हैं कि इस बात से अगर अजीज व अकारिब नाराज हो जाए तो उनको कुरान की आयतें पढ़ाई, ये आपकी गलती है कि आपने उनको आज की इस आयतों में नहीं बुलाया, उनको ये तफसीर बहस करते। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अल्लाह का जहां हुक्म आ जाए, जैसे वो एक औरत है तो उसको मर्द की दूसरी शादी का हुक्म मुश्किल लगे, मर्द की चार शादियां, जिप द माउथ, इतनी जरूरत एक ईमान वाले में नहीं हो सकती कि जिसको अल्लाह कहे करो तो मैं कहूं दूसरी शादी आप क्यों करेंगे, चार क्यों करें। इसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या है, डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, इसके ऊपर अमल करें वैसे ना करें, क्योंकि आपकी चिड़ में अगला बंदा बोल ले, दूसरा बंदा कुछ और बोल दे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ की चीज होगी। जी और कोई बात थी? जी है रेडी है दोनों चीजें,
5 मिनट में रेडी होगा खाना।
चले ठीक है, फिर ऑनलाइन वाले अगर हमारे साथ हैं तो हम फिर पहले ब्रेक ले, नमाज पढ़ के ब्रेक ले लेते, क्योंकि वो मौजू फिर शुरू होगा तो वो बीच में फिर उसका तसलसल रुक जाएगा। ठीक है जैसे आप चाहें, मैं इधर वेज फाइन। एक आयत मर्दों वाली पढ़ी जा सकती है, वो तो छोटी सी है लेकिन मौजूद इकट्ठे ही चले तो बेहतर है। नहीं ठीक है, हम ब्रेक ले रहे हैं अभी, कभी लेट तो बहुत दफा ली है लेकिन आज जल्दी भी लेते हैं। बेटा कवर योर माउथ, ओके, आपके मुंह में शैतान चला जाएगा। वो किसी ने एक भेजा हुआ था, एक वीडियो सी थी कि हमारे पाकिस्तानी मिथ ना, तो वो बच्चा जो करता है उसके जवाब में माँ कहती है, जैसे वो अगर मुंह कवर नहीं कर रहा है तो कह रहा है शैतान तुम्हारे मुंह में चला जाएगा, नमाज पढ़ के जाए नमाज छोड़ के वो उधर चला गया तो कहते हैं अरे अरे बेटा उसको थप्पड़ मारती है, इसको के ऊपर से दोहरा कर दो वरना शैतान नमाज पढ़ेगा। फिर वो एंड पे कर रहा था ना, तो वो बटन को यूं 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 कर रहा था ना, तो फिर माँ के शॉट करती है, कहते है, अब शैतान को क्या हुआ, कहती बदतमीज बटन खराब हो जाएगा कि ये जो तुम बार बार खोल रहे हो, तो मकसद ये है कि हमारे अपने मिथ हैं कि हर चीज में हम शैतान को डालते हैं। तो बहरहाल जी ब्रेक है आपकी, और अभी नमाज की ब्रेक है, अजान लगा दीजिए।